मौली मणिप्रभाण, मणिप्रभाण नी जो है ये भी गुरु हो गया। नहीं एक ही बात नहीं है, यही तो हम बताना चाह रहे इतनी देर से कि गुरु जो है उसके पांच भेद हैं। दीर्घ ही गुरु होता है ऐसा नियम नहीं है, ये बाकी चार जो बताया ना, अनुस्वार युक्त जो है वो दीर्घ नहीं है लेकिन गुरु है। संयम, स जो है दीर्घ तो नहीं है लेकिन अनुस्वार युक्त। नहीं वो तो बोलचाल की बात अलग है वो, लेकिन ये हम तकनीकी बात बता रहे हैं, जो उसका जो एक अलग शास्त्र है इसका, छंदस शास्त्र, उसके अनुसार हम जो नियम है वो बता रहे हैं। और बोलचाल में तो ठीक है दीर्घ और गुरु कह दो आप किसी चीज को, वो फिर समभिरूढ़ होता है, वो जो रूढ़ हो जाता है, लेकिन ये उसका तकनीकी अर्थ है। पांच भेद है गुरु के, नहीं दीर्घ के पांच भेद नहीं, दीर्घ के तो ये तो आ ई ये सब दीर्घ है। हाँ बस 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 बस, तो चार हो गए, पहला अनुस्वार युक्त, दूसरा विसर्ग युक्त, तीसरा दीर्घ और चौथा संयुक्त अक्षर का पूर्व अक्षर। अक्षर और वर्ण एक अर्थवाची है, अक्षर कह लो या वर्ण कह लो, वर्णमाला। और फिर आखिरी जो गुरु है वो छंद के अंत में जो अक्षर आता है, किसी भी पंक्ति के आखिरी वाला जो अक्षर होता है पद के अंत का, वो वा, वा का मतलब होता है विभाषा। विभाषा का मतलब चाहो तो उसको गुरु रखो और ना चाहो तो फिर उसको ह्रस्व रहने दो, लघु रख सकते हो। जैसे राजा राणा छत्रपति एक चरण हो गया, हाथिन के असवार दूसरा चरण हो गया, मरना सबको एक दिन तीसरा, और अपनी अपनी बार। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जरूरी नहीं है अपने को गुरु रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए राजा राणा छत्रपति ती जो है वो ह्रस्वी रखा है, और ह्रस्व को उन्होंने लघु ही गिना है, क्योंकि तेरह मात्रा चाहिए तो राजा चार मात्रा हो गई, राणा फिर चार हो गई, और छत्र तीन और पति दो, कितने हुए चार चार तीन दो, तेरह हो गई मात्रा। तो ये तेरह मात्रा चाहिए थी इसलिए फिर इसमें अपने ने ती को गुरु नहीं बनाया, पद के अंत में होते हुए भी उसको ह्रस्व ही रखा। मात्राओं के छंद में ऐसे नियम रहते, और फिर कभी कभी मौक्तिक दाम नाम का एक छंद है बारह अक्षरों का, तो उसमें भी अंतिम अक्षर अपने को लघु चाहिए, तो पद के अंत में जो भी अक्षर आएगा लघु ह्रस्व तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसको आप पद के अंत में होने के कारण गुरु नहीं बना सकते, लघु ही चाहिए वहां तो और फिर देखिए भक्तामर स्तोत्र में अपने को पद के अंत में गुरु चाहिए। अब वो अक्षर भले ह्रस्व हो लेकिन मात्रा उसकी दो गिनी जाएगी और उस अक्षर को गुरु माना जाएगा। आक्रांत लोक मलि नील मशेष माशु, शु ह्रस्व है लेकिन गुरु है, शु जो है वो लघु नहीं है गुरु है, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र का नियम है वो वसंत तिलका में अंतिम अक्षर नियम से उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौ गह, आखिरी जो गह दिया है गह यानी गुरु, गुरु जरूरी है वहां पर, तो फिर वो मात्रा भले ह्रस्व हो लेकिन अक्षर गुरु होगा। इस प्रकार गुरु के पांच भेद होते हैं, और लघु में क्या होता है जो ह्रस्व है वो लघु है, और कदाचित जो दीर्घ है उसको भी लघु बनाया जा सकता है। दीर्घ को लघु कैसे बनाएंगे, तो इसमें प्राकृत भाषा में ऐसे विकल्प किए हैं, क्या विकल्प किए हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो उन्होंने जैसे नमो लोए सव साहुणम, ए के ऊपर अगर ऐसा आकार बना दिया, ये बाल बोध के लिए हमेशा नहीं मन, आपको मिला भी नहीं होगा कभी भी देखने, लेकिन रैणसार में आप देखिएगा कि कई गाथाओं में आपके पास अगर प्रति हो रैणसार की उसमें देखना आप, कई गाथाओं के ऊपर ऐसे आकार बने हुए हैं। अब कई बार समझ भी नहीं आता कि ये क्या बना हुआ है ऐसा चंद्राकार, उसके अंदर बिंदी भी नहीं है। अब कोई ज़्यादा होशियार हो तो अंदर बिंदी डाल दे कि देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है समझ ले। पहले हमारा भी यही हाल था, आचार्य श्री पाठ करते थे संधि विग्रह करके, और हम सोचते थे कि आचार्य श्री गलत नहीं बोल सकते, इसकी छपाई गलत हो सकती है, तो हमने कई जगह सुधार दिए थे, एक ही मात्रा कर दी थी। फिर बाद में जब व्याकरण पढ़ा है महाराज जी ने, तब पता चला कि संधि में वो ए लोप हो जाता है, तब पता चला कि वो जो सुधार किया था वो बिगाड़ कर दिया था। लेकिन हमारी आदत थी कि हम कभी पेन से नहीं करते थे, क्योंकि सुधार भी अगर गलत हो जाए तो उसको मिटा तो सके, उसको भी सुधार सके। तो पेंसिल से करने से क्या होता है कि उतना अवकाश रहता है, पेन से अगर एक बार कर दो तो फिर वो परमानेंट हो जाता है। मतलब आपने अगर गलत सुधार कर दिया तो आगामी पूरी पीढ़ियां जो भी उस शास्त्र को पढ़ेगी वो उसको सुधरे हुए को बिगाड़ कर पढ़ेगी, ये हाल होता है। तो ऐसे पांच भेद गुरु के होते हैं। और फिर लघु जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, रस्व भी लघु हो सकता है और दीर्घ भी लघु हो सकता है, कदाचित दीर्घ भी लघु हो सकता है। जैसे ए दीर्घ है लेकिन नमोकार मंत्र में ए लघु है, तब जाकर के 58 मात्रा बनती है। एक वरिष्ठ माता जी का सुझाव ये है कि नमोकार मंत्र में ए को अपन गुरु रहने दो, लेकिन सिद्धांत में जो सी है उसको लघु बना दो। लेकिन अगर वैसा अपन करते हैं तो उसमें समस्या ये आती है कि उसका उच्चारण अपन सिद्धांत स्वराघात के साथ नहीं कर सकते। सिद्धांत ये जो उच्चारण है वो आधे द का उच्चारण कैसे करोगे आप बताइए? अगर सी को आप लघु मानेंगे तो सिद्धांत ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा आपको, सिद्धांत। जबकि आबाल गोपाल प्रसिद्ध उच्चारण क्या है सिद्ध शब्द का? सिद्ध, यही उच्चारण करते हैं बच्चे से लेकर वृद्ध तक। तो जो उच्चारण की पद्धति है उसको अपन न बदलते हुए ए में जहां पर गुंजाइश है, ये ए को लघु मानने का सुझाव हमारा है, क्योंकि हमें और कहीं भी ऐसा स्थान दिख नहीं रहा है पूरे नमोकार में कि जहां पर किसी अक्षर को मात्रा घटा करके पढ़ा जा सके। पूरे नमोकार में आप देख लो नमो अरिहंताणम, कहीं गुंजाइश नहीं है। जहां रस्व है वहां रस्वी बोलना पड़ेगा। नमो सिद्धाणम यहां पे कोई गुंजाइश नहीं है। नमो आयरियाणम, अब आयरियाणम को कुछ लोग जो पढ़ते हैं आर्या पाठ करते समय, दो प्रकार से आर्या पाठ होता है, जैसे एक हम नमूना बता रहे हैं आपको दोनों का, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। पहले अशुद्ध बताएं कि शुद्ध? पहले शुद्ध, हाँ, ताकि फिर समझ में आए कि अशुद्ध में क्या अशुद्ध था। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहूणम, ये शुद्ध। अब अशुद्ध पाठ इसका कैसे करेंगे? जो करते हैं लोग बता रहे हैं, करना नहीं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सवसाहूणम। आया अंतर समझ? दो जगह गलत पढ़ा था हमने, एक आयरियाणम, वो री दीर्घ कर देने से गलत होता है उच्चारण, और फिर लोए सवसाहूणम। ए जो है उसको आप गुरु बना दो, 16 मात्रा हो जाएगी, छंद भंग हो जाएगा। आर्य में वहां 15 मात्रा चाहिए। नमो लोए सब साहूणम 15 मात्रा का होता है, और 15 मात्रा का तभी संभव है जब ए को आप लघु पढ़ोगे। पढ़ के हमने बतलाया था, आपने अगर ध्यान दिया हो, नमो लोए सब साहूणम, नमो लोए सब, ए को लघु पढ़ने में फिर सब को उसके साथ पढ़ना पड़ता है, नमो लोए सब साहूणम। ये भी एक बहुत बड़ी कला है। हमारे गुरुजी ने बताया था कि आर्या पाठ सबको नहीं आता। पहले दिन हमने कहा था इसका स्वाध्याय प्रारंभ करते समय, तो उसमें उच्चारण करते समय जैसे हमने एक नियम बताया था आपको कि जो गुरु हो उसमें तो आप ध्वनि को खींच सकते हैं, लेकिन रस्व मत खींचना। जैसे आचार्य भक्ति पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, श्रुत जलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटु मतिभ्य, ये पटु ये कहाँ से आ गया? तो उसको विभावना पटु मतिभ्य ना को खींच लो, स्वपरमत विभावना पटु मतिभ्य सुचिरित तपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य, नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य, ऐसा नहीं करना, नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य। ये उसकी कला है पढ़ने की। मतलब सिर्फ तकनीक है, अब अभ्यास करो तो फिर वो कला अपने अंदर भी आ सकती है, तरीका उसका ये है। तो अपाणम प्रिय शरणम खमादि भावे ही परिण दो होदी, हिम नहीं बोलना उसको, खमादि भावे हिम तो छंद पढ़ नहीं सकते आप, खमादि भावे ही परिण दो होदी, तिव्व कसाया विठो अपाणम हणदि अपेण। अप्पा प्रिय शरणम नम होदी, ये नम जो है संस्कृत भाषा में एक अव्यय है, अगर अप्पाणम एक साथ लिख दो तो उसका अलग अर्थ होता है, और अप्पा और नम अलग अलग लिखो तो अर्थ बदल जाता है, उच्चारण दोनों का एक है, पाठ सुनकर के कोई नहीं बता सकता कि ये साथ में है कि अलग अलग है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ना अप्पाणम प्रिय शरणम, अब कौन जान सकता है कि अप्पा और नम अलग अलग है, वहां देखो तो पता चलता है, गुजराती प्रति में अलग है कि साथ में, अलग ही चाहिए वो, अप्पा और णम ये दो अलग होना चाहिए, और नीचे वाली लाइन में अप्पाणम एक साथ चाहिए, है नीचे वाली लाइन में ऊपर नहीं, ऊपर या नीचे दोनों में साथ में दिया ना, नहीं ऊपर वाले में अलग चाहिए, णम अलग चाहिए। अब इसी वजह से क्या हो गया, पंडित जयचंद छाबड़ा जी से भी एक त्रुटि हो गई है, इतना सुंदर उन्होंने समय सार पर टीका लिखी है, अमृतचंद स्वामी की टीका का ढूंढारी अनुवाद किया उन्होंने समय प्राभृत नाम से, और वहां से प्रकाशित है दिल्ली या मेरठ कहाँ से छपी वो, नया संस्करण भी उसका सुंदर निकला था, लेकिन उन्होंने क्या 156 नंबर की जो गाथा थी समय सार की 156वीं गाथा, उसमें उन्होंने जो अर्थ किया वो थोड़ा सा इन्हीं अक्षरों के साथ में लिखने के कारण गलत हो गया। क्या गाथा ये है, मोतूर्ण निच्छयट्ठम व्यवहारे न विदुषा, व्यवहारे न अलग था वो, व्यवहारे न विदुषा पवट्टंती परमठ मस्सिदान दु जदीन कम्मखो होदी या विहियो। अब इसमें क्या हुआ, अमृतचंद स्वामी ने विहियो पाठ रखा और जयसेन स्वामी ने होदी रखा, अब इसमें क्या हो गया कि व्यवहारे न विदुषा पवट्टंती नहीं करते प्रवृत्ति, और वो व्यवहारेण एक साथ हो गया तो क्या हो गया, व्यवहार से प्रवृत्ति करते हैं, कितना जमीन आसमान का अंतर हो गया दोनों में। फिर उस पर सौराष्ट्र में जो प्रवचन हुए थे समय सार के ऊपर, उस पर उन्होंने कह दिया कि कुंदकुंद स्वामी के समय भी व्यवहारी पंडित होते थे, क्या आचार्य कुंदकुंद स्वामी के समय भी व्यवहारी पंडित होते थे, ये वाक्य बोला है उन्होंने, जो उसी में उलझे रहते थे, लेकिन जो जदीण यतिजन है परमठ मस्सिदान, जो परमार्थ अर्थात निश्चय के आश्रित यति हैं, उनके लिए कम्मखो विहियो कर्मों का क्षय कहा गया है, यानी कर्मों का क्षय कौन कर सकता है, जो निश्चय के आश्रित है। पर वहां पर ऊपर वाली पंक्ति का वह अर्थ था ही नहीं, पर संभव है जयचंद छाबड़ा जी ने क्या है कि उसमें अपनी तरफ से कोई भी विद्वान या कोई भी जैन धर्म का श्रद्धालु व्यक्ति बेईमानी नहीं करता, देवशास्त्र गुरु के प्रति बेईमानी करने वाला तो मिथ्या दृष्टि ही हो सकता है, सम्यक दृष्टि कभी हो ही नहीं सकता। तो वो तो ऐसा है कि उनको जो प्रति मिली होगी पांडुलिपि, उसमें लिपिकार के प्रमाद से कभी कोई अक्षर पास में लिख जाते हैं, तो फिर उनने व्यवहारेण को व्यवहारेण ऐसी छाया बना करके उसका अर्थ लिख दिया, जबकि सर्वोपि प्रतिषिद्ध अमृतचंद स्वामी ने भी उसका निषेध किया। अब वो निषेध शब्द न अगर शब्द न हो गाथा में तो निषेध कैसे निकलेगा, संभव ही नहीं। शुभ कर्म आत्मा सर्वोपि व्यवहार प्रतिषिद्ध, ये वाक्य अमृतचंद स्वामी की टीका में जो लिखा है, और जयसेन स्वामी ने तो न को एकदम अलग ही लिखा, मतलब उसमें व्याख्या ही उनने अलग करी है एक एक, वो तो क्या खंडान्वयी टीका करते हैं जयसेन स्वामी, और अमृतचंद स्वामी दंडान्वयी भावात्मक टीका करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रतिषिद्ध शब्द दिया अमृतचंद स्वामी ने, वो गाथा में अगर न नहीं हो तो फिर टीका में प्रतिषेध नहीं हो सकता, प्रतिषेध यानी निषेध नहीं हो सकता। लेकिन हो ये गया कि जयचंद छाबड़ा जी ने जो उसका अर्थ लिख दिया गाथा का, उस पर जो व्याख्यान करने वाले और व्याख्यान करने वालों के आधार पर जिन्होंने और भी आगे विस्तार किया उसका, समयसार अनुशीलन हो या जो भी हो, जिसमें भी जो भी उसके बारे में ज़्यादा विस्तार हो, सहजानंद जी की टीका और देखनी पड़ेगी इस विषय में। सप्तदशांगी टीका है ना, समयसार आपके यहाँ होगी, समयसार सहजानंद जी वाली, वो आप देखिएगा शाम को, यहाँ पर अपन देख लेंगे सप्तदशांगी टीका, यहाँ पर ले आना आप तो उसमें निकाल लेंगे। तो ऐसा हो जाता है, एक एक अक्षर में थोड़ा सा अंतर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अप्पा पिय शरणम, अपनी आत्मा भी शरण है, और अप्पाणम करोगे तो क्या होगा, उसका अर्थ ही मटिया मेट हो जाएगा। अप्पाणम का अर्थ होता है अपने को, अब अपने को शरण है इसका ये वाक्य बनेगा क्या कभी, अपने को शरण है ये तो वाक्य नहीं बनती, वाक्य रचना ही नहीं होती। तो अप्पा मतलब अपनी आत्मा, पिय भी नम याने निश्चित रूप से, शरणम होदी शरण होती है, माने अपनी आत्मा भी अपने लिए रक्षक बन जाती है। कब, तो आगे वाला शब्द देखिएगा, नहीं तो आप अभी सोचोगे भाई अपनी आत्मा ही अपने लिए रक्षक है, देवशास्त्र गुरु को हटाओ, ऐसा नहीं। किस अवस्था में अपनी आत्मा अपने लिए शरणभूत है, तो बोलते क्षमादि भावे ही परिणत हो, अगर क्षमा मार्दव आदि 10 धर्म रूप भावों में आत्मा परिणत हो जाए, यानी अपनी आत्मा में ये पर्याय आ जाए जहां उत्तम क्षमा रूप, उत्तम मार्दव आर्जव आदि, तब अपनी आत्मा ही अपने लिए रक्षक बन जाती है। और अगर कषाय भाव हो तो नीचे वाली लाइन है, देखो घबराने की बात नहीं, कहीं दूर नहीं जाना। तीव्र कषाया विठो, तीव्र कषाय से आविष्ट हो अगर कोई, आविष्ट यानी आवेश युक्त, तीव्र कषायों के आवेश से जो भर जाता है वह अपेण अप्पाणम हणदि, अपने द्वारा, अपेण यानी अपने द्वारा, अप्पाणम यानी अपना, हणदि हनन करता है, यानी आत्मा अपना ही नाश करता है अगर तीव्र कषायों से आविष्ट हो जाए, और आत्मा अपनी ही रक्षा करती है अगर क्षमादि भाव रूप परिणत हो जाए। तो अपना नाश करना या फिर अपनी रक्षा करना, इसका फैसला कौन करेगा, क्योंकि ये अंतिम गाथा है, अशरण अनुप्रेक्षा की अंतिम गाथा है, और इसमें अगर अपन सार ग्रहण कर लें, आचार्य महाराज ने तो सार ग्रहण करवाने के लिए ही ये गाथा दी है, तो क्या उनने दो बातें कह दी है, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आपके ऊपर छोड़ दिया, उनने कोई प्रेशराइज नहीं किया किसी को कि तुम ऐसा करो वैसा करो। उनने क्या कहा कि अगर क्षमादि भावों को आत्मा धारण कर लेती है तो आत्मा अपनी रक्षा कर लेती है, और अगर कषायों के आवेश में पड़ जाती है तो फिर अपना ही घात करती है। तो अब अपन विवेकी लोगों को विचार करना है इस पर कि अपना घात करना ठीक है या फिर अपनी रक्षा करना ठीक है। वैसे जब जीवन मरण का प्रश्न आता है तब तो हैदराबाद में बाईपास सर्जरी के लिए लोग पहुंच जाते हैं, अहमदाबाद में भी जाता है, अपोलो से लेकर वेलोर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और फिर AIIMS है दिल्ली में, वहाँ तक सब चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन जब वास्तव में अपनी रक्षा की बात आती है तो वहाँ पर जीव सावधान नहीं रह पाता। मैंने इतना अगर कोई भी प्राणी समझ ले कि मुझे नुकसान इन शारीरिक कष्टों से तो कम होगा, मेरी कषायों से और मिथ्यात्व से मेरी हानि ज्यादा होगी, इतना अगर किसी के अंदर विवेक आ जाए और वो बचना प्रारंभ कर दे मिथ्यात्व और कषायों से, तो फिर वास्तव में संसार समुद्र में उसकी रक्षा हो सकती है, वो डूबने से बच सकता है। और अगर कषाय करता रहा तो फिर निश्चित रूप से अपना ही हनन होगा, बार बार चार गतियों में जन्म मरण का फेरा चालू रहेगा, बार बार मरना ही तो अपना नाश है। कितनी बार मरता है, कितनी बार जन्म लेता है, जन्मदिन मनाता है लेकिन उसका दूसरा पक्ष नहीं देखता, वर्षगांठों के बहाने। वर्षगांठ जानते हैं? एक वो एनिवर्सरी होती है विवाह वाली, और फिर एक जन्म से संबंध रखने वाली एक होती है वर्षगांठ। वर्षगांठों के बहाने जिंदगी कटती गई, एक तरफ बढ़ती गई तो एक तरफ घटती गई। मूढ़ मानव की मनुजता मौज मस्ती में गई, हो गई काया पुरानी पर रही तृष्णा नई। ये मतलब एक करुण कहानी है जीवों की, और इस पर विचार करो और सोचो अपने अंदर, अपने आप से पूछो क्या करना, अपने को बचाना या मारना। वो जीवन मरण वाले मरण की बात नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा का जो अंदर से हनन हो रहा है कषायों के द्वारा, घुन जैसा है, ये कीड़े जैसा कषाय, कषाय भाव बिल्कुल एक कीड़े जैसा है। पेड़ को खा जाता है, ऊपर से पेड़ अच्छा दिख रहा है, अंदर से वो कीड़ा पूरा खा जाता है, फिर एक दिन भड़ाक से गिर जाता है वो। जब क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार अमेरिका पहुंचा, लगभग 400-500 वर्ष के बीच की बात होगी पुरानी, तब वहां पर कोलोराडो की पहाड़ी पर एक छोटा सा अंकुर उसने देखा, एक पेड़ का अंकुर, ओक ट्री बोलते हैं जिसको, उसका अंकुर था। अब वो पेड़ जब बड़ा हुआ, 400 साल तक के वो पेड़ जीवित रहा और विशाल वृक्ष बन गया वो, और न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोगों को उसने छांव प्रदान की। 14 बार उसके ऊपर बिजली गिरी, लेकिन फिर भी वो नष्ट नहीं हुआ, उसमें फिर नई नई पत्तियां आ जाती थी और फिर वो फल फूल जाता था, लेकिन अंत में उसमें कीड़ा लग गया। और कीड़ा लगने के बाद क्या दशा हुई, वो 400 वर्ष पुराना वृक्ष बिल्कुल धूल में मिल गया, नष्ट हो गया। तो 14 बार बिजली गिरी, अपन 84 लाख योनियों में कई बार मरण रूपी बिजली को झेल चुके हैं, लेकिन आत्मा अभी तक नष्ट नहीं हुई है। लेकिन ये जो कषाय रूपी कीड़ा लग जाता है, ये अपने को संसार रूपी धूल में मिला देता है, फिर अपन वहां से ऊपर नहीं उठ सकते, उससे पार नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य महाराज ने कितना सुंदर संदेश दे दिया इसमें, दो गाथाओं में पूरा सारांश दे दिया। देखो, अनित्य 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 बता दे, अशरण अशरण बता दे, तो फिर घबरा जाता है मन, फिर हम करें क्या भाई, ऐसा आता है प्रश्न अंदर से। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो, डरो मत, सब कुछ अनित्य है, संसार में कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, पर अगर रत्नत्रय को धारण कर लो और परम श्रद्धा के साथ, माने सम्यक पूर्वक, तो वो अपने लिए रक्षक बन जाता है, और कोई भी संसार में भटकने वाले जीवों को बचा नहीं सकता। फिर क्या कह दिया कि क्षमादिक भावों से संयुक्त आत्मा ही अपने लिए शरणभूत है, रक्षक है, और कषायाविष्ट जीव अपेण अपाणम हनदि, अपने ही द्वारा अपना हनन करता है, अपना नाश करता है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि जब भी कषाय के अवसर आते हैं, तब थोड़ा अपने को संभालना चाहिए। बस वो थोड़ी देर का मामला है, एक क्षण के लिए अगर आप क्रोध को कंट्रोल कर लो तो आपका भविष्य सुधर जाए, वरना एक क्षण का क्रोध आपके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। जबलपुर में एक स्टिकर निकला था, उसमें ये वाक्य लिखा था, एक क्षण का क्रोध आपके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। इसलिए उससे फिर अपन क्या अर्थ निकालो कि एक क्षण के लिए आप क्रोध को संभाल लो, अब उस एक क्षण क्षण को अगर अगर टेक्निकली अपन देखें तो 4 मिनट का एक क्षण होता है, क्योंकि शास्त्रों में क्षण की जो परिभाषा है, द्वादश क्षणा मुहूर्तम, 12 क्षणों का एक मुहूर्त होता है। तो एक मुहूर्त में मिनट कितने हुए, 48, और क्षण हुए 12, तो 48 मिनट में अगर 12 क्षण हुए तो एक क्षण कितने मिनट का हुआ, 4 मिनट का। तो 4 मिनट अगर आप गुस्से को थाम लो तो फिर भविष्य सुधर जाए। आ रहा है समझ में? और क्रोध के ऊपर हमने एक अपना व्यक्तिगत प्रयोग किया, वो एक अपने अनुभव की बात है कि क्रोध के केंद्र को देखने से, यानी क्रोध के कारण को देखने से क्रोध बढ़ता जाता है। जिस कारण से आपको क्रोध आया है उस पर से अगर आपने ध्यान नहीं हटाया, आपने उस पर अपन ने अपना ध्यान केंद्रित रखा, तो फिर क्रोध शांत नहीं हो सकता। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी गलती की, एकदम सभा में आकर के आपके सामने बैठ गया। कुछ VIP लोग रहते हैं जो हमेशा, कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ आप, हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई ना कोई ऐसा VIP मिलेगा आपको जो न मंगलाचरण में आएगा और न आखिरी तक बैठेगा। कुछ ऐसे मिलेंगे जो उठ करके बीच में चले जाते हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे कि जो बाद में प्रवेश करते हैं। पंचास्तिकाएं में एक बहुत सुंदर गाथा है जयसेन स्वामी की टीका में, आदि मंगल करणे सिस्सा लहु पारगा हवंतुत्ति मज्जे अवोच्छित्ति विज्जा विज्जा फलम चरी में। बहुत सुंदर, आप लिख लेना इसका अर्थ, गाथा भले लिखो या ना लिखो। प्रारंभिक मंगलाचरण में सम्मिलित होने से जो भी शिष्य हैं वो बहुत जल्दी शास्त्र के पारगामी बन जाते हैं। आप लोग पूछते हैं ना कि हम सुनते हैं लेकिन याद नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले का मंगलाचरण नहीं करते। लेट लतीफ साहब है साहब। तो प्रारंभिक मंगलाचरण करने से ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है। देखिए उसका फल कितना बड़ा फल, बुद्धि तीव्र होती है और शास्त्र का पारगामी बन जाता है वो शिष्य जो प्रारंभिक मंगलाचरण में उपस्थित रहता है। मध्य अवोच्छित्ति, और मध्य में अगर कोई मंगल करते हैं, जैसे नमः है या ओम बोल दिया या जय बोल दिया या फिर कोई अच्छा मंगल भाव आ गया अपने अंदर, तो वो जो मध्य का मंगल है वो स्वाध्याय का क्रम टूटने नहीं देता। आपने जो ग्रंथ प्रारंभ किया है वो निर्विघ्न संपन्न होगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये पता नहीं पूरा हो सकेगा कि नहीं होगा। नियम मतलब मध्यम मंगलाचरण जो है ग्रंथ की पूर्णता तक आपको पहुंचा देता है। और चरी में अंतिम जो मंगलाचरण, अंत में अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं ना, तो अंतिम मंगलाचरण से क्या लाभ होता है? तो विद्या फलम विद्या, ये समझ लो कि इस विद्या का, इस जैनागम के ज्ञान का जो फल है, क्या फल है? आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा, नानस फलम उवेक्खा, ज्ञान का फल है चारित्र, समता भाव, उसकी प्राप्ति होती है। तो तीनों मंगलाचरण करना चाहिए, बीच में भाव मंगल रखना चाहिए। कोई भारी विषय आ जाए तो फिर अमंगल भाव नहीं करना अंदर, अरे कहाँ फंस गया आज, ये क्या विषय निकला है, ऐसा नहीं। जिनवाणी है, एकदम श्रद्धा का भाव रखना। कभी कुछ कठिन बात भी आती है, सुबह में सरल होती है, शाम को थोड़ी कठिन होती है, लेकिन तो भी अंदर श्रद्धा भाव रखिए और फिर देखिए कितना स्वाध्याय अगर व्यवस्थित हो जाए तो समाज पूरी सुधर सकती। सब लोग स्वाध्याय नहीं करते, इसलिए जिसको जिनवाणी का आगम का सही ज्ञान नहीं है उसको आध्यात्मिक दृष्टि से अनपढ़ ही कहा जा सकता है। अंगूठा छाप, अनपढ़ कहने से फिर भी आपको अच्छा लगे, किसी पिक्चर का नाम भी था अनपढ़, लेकिन अंगूठा छाप बोलने से आपका स्वाभिमान जागृत हो सकता है। वो व्यक्ति अंगूठा छाप है जिसकी स्वाध्याय में रुचि नहीं है। बाकी कितना भी क्वालिफाइड हो, लौकिक दृष्टि से इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी डिग्री ले हो, लेकिन स्वाध्याय नहीं करता। चार अनुयोगों का जिसको अध्ययन, एक अनुयोग पढ़ लो तो भी अधूरा अध्ययन है, तो भी डिग्री होल्डर नहीं कहलाएगा वो भी ऐसे ही अधूरा है। चारों अनुयोगों का स्वाध्याय हो तब जाकर के वो पढ़ा लिखा माना जा सकता है। और फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से अपन विचार करें तो फिर शब्दात्मक भले उसने अध्ययन न किया हो, पर जिसने अपने भावों को पढ़ना सीख लिया वो सच्चा स्वाध्यायी है, क्योंकि स्व का अध्याय अध्ययन ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय शब्द कैसे बना? स्वस्य अध्याय अध्ययनम स्वाध्याय, अपना जो अध्ययन है उसी का नाम तो स्वाध्याय है।